ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் shivam.org, த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவ மஹிமா பிரசன்ட் பாய் சுவாமி சந்தோஷி மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய்.
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, नागिंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मंगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय महेश्वराय मंदालकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रथमनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वंदनाज वृंद सूर्याय दक्षाधनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषाध्वजाय तस्मै शिकारा नमः शिवाय. विचार कर रहे थे भगवान श्री हरि सुपूजिताय मंदार पुष्पम बहुपूज्य सुपूजिताय. भगवान श्री हरि आदिदेव जिनकी नित्य सुपूजा करते हैं. सुपूजा का अर्थ है, जैसा कि मैंने कहा था, पूजा दो तरह की होती है, एक बहिरंग पूजा और एक अंतरंग पूजा. अंतर पूजा को मानस पूजा कहते हैं. मानस पूजा के लिए बाहर से पूजा करनी चाहिए, बाह्य पूजा. बाह्य पूजा के बिना मानस पूजा नहीं हो सकती, अंतर पूजा नहीं हो सकती. सुपूजिताय मंदार पुष्पम बहुपूज्य सुपूजिताय, अर्थात पूजा और सुपूजा. पूजा है बाहर से पुष्पादि को लेकर गंध अक्षत धूप दीप नैवेद्य पंचोपचार षोडशोपचार आदि के द्वारा जो हम पूजा करते हैं, बिल्व पत्रादि को लेकर. और सुपूजा है कि जो हम मन से भगवान की पूजा करते हैं, मानस पूजा. बाह्य अंतर, बाह्य पूजा और भीतर पूजा के द्वारा भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए. और जिह्वा से भगवान का नाम ओम नमः शिवाय आदि का जप करना चाहिए. इस शिव नाम, शिव शिव कहते हुए, शिव के इस पावन नाम के स्मरण से न जाने कितने असंख्या असंख्य पापी. मैं तो कई बार ये बात कहती हूँ कि भगवान ने अवतार लेकर के तो कुछ ही पापियों का उद्धार किया होगा, परंतु भगवान के नाम ने न जाने कितने असंख्य असंख्य करोड़ असंख्य करोड़ पापियों का उद्धार कर दिया. क्योंकि पाप करने वाले पापी की एक सीमा है, किसी सीमा तक पाप कर सकता कोई, उससे अधिक क्या करेगा. क्योंकि जीव है, सीमित है, उसकी सोचने की सीमा है, उसकी करने की सीमा है, उसकी बोलने की सीमा है, एक सीमा पर जाकर वो रुक जाता है. परंतु वो क्षमा करने वाले भगवान अनंत है, असीम है, उनका कोई पारावार नहीं है, आदि मध्य अंत नहीं है. इसलिए ऐसे अनंतांत करुणा वरुणालय भगवान आशुतोष चंद्र मौली चंद्र चूर चंद्रनाथ भगवान शिव हर लेते हैं, इसीलिए तो उनका नाम हर है. पापों को हरने के कारण उनका नाम हर है। वो हरते हैं, भक्तों के अज्ञान को हर लेते हैं। जन्मार्चित अनेक जन्मों में जो जमा किए हुए संचित पापादि हैं, उन सब पापों को भक्त का हरण कर लेते हैं, जब जो उनके पावन नाम के स्मरण के द्वारा उनकी शरण में जाता है। शिवाय गौरी वंदना जस्म। भगवती शिवा ने अर्थात गौरी माँ भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जो नित्य भगवान शिव की वंदना करती हैं, अर्थात भगवान शिव के पावन नाम का स्मरण करके, भगवती गौरी की ये प्रतिज्ञा है, ये हिमालय पुत्री है। भगवती के अनंत नामों में एक नाम गौरी भी है। पूर्व में जो सती थी वो बाद में गौरी बन करके हिमालय में प्रकट हुई। भागवत आदि में आप लोगों ने ये पौराणिक कथा, क्योंकि भगवान की ये कथा सुंदर दक्ष के यज्ञ में सती ने देह त्याग किया। देह त्याग करने के अनंतर मन में अत्यंत भगवान शिव का अनुराग लिए हुए सती ने, सती का सामान्य अर्थ यही नहीं है कि सती केवल एक स्त्री की वो प्रथा है जो अपने पति के साथ में आग में जलकर मर जाती है, उसको सती कहते हैं। ऐसे सामान्य हमारे दिमाग में सती के प्रति एक ये धारणा बनी हुई है कि हमारे देश में पहले एक सती प्रथा थी। याद रखना, सती प्रथा की कोई बात नहीं है, सती कोई परंपरा नहीं है। परंपरा कहते हैं कि एक के पीछे एक, एक के पीछे एक निरंतर चली आ रही है, ये कोई प्रथा, ये कोई परंपरा नहीं है। परंतु पूर्व में ऐसा होता था कि कुछ स्त्रियां जो अपने पति पर इतनी निष्ठावान होती थीं कि पति निष्ठा को रखते हुए वो पति के साथ शरीर को लेकर के सती हो जाती थी, एक अर्थ ये। और दूसरा, सती स्त्री भी हो सकती है, सती पुरुष भी हो सकता है। सती कोई परंपरा नहीं, सती तो वो मति है, वो बुद्धि है जो सत्य के ऊपर स्थिर है। जिस बुद्धि की सत्य पे स्थिरता हो गई, उस बुद्धि का नाम सती है। सती मति होती है, बुद्धि होती है। जिस बुद्धि में सत्य के अतिरिक्त, जैसे गौरी की बुद्धि में, मां सती की बुद्धि में भगवान शिव के लिए यही वंदना है, इसीलिए तो कोटि जन्म रगर हमारी, बरहु शंभु नहीं रहूं कुमारी। एक जन्म नहीं, अनेक जन्म जन्मांतर की सती की भगवान शिव के चरणों में अनुरक्ति है। अत्यंत शिवानुराग से, शिव के अनुराग में, प्रेम में लीन जो वृत्ति है, बुद्धि है, वही सती है। वो सती क्योंकि भगवान शिव के चरणों में प्रीति रखते हुए यज्ञाग्नि में योग के द्वारा शरीर को समाप्त करने के उपरांत वह हिमालय के यहाँ उनकी पुत्री बन करके, हिमालय ने बहुत तपस्या की और उनके तपस्या के फलस्वरूप इस पवित्र हिमालय माने जो एक अत्यंत दृढ़ संकल्पी है। और हिमालय की विशेषता है कि हिमालय हमारे देश की ये महानता है नारायण, हमारे यहाँ पर्वत भी चेतन है, नदियां भी चेतन है, वन भी चेतन है, इसीलिए हम वनों की पूजा करते हैं। वृंदावन वन है और उसे चेतन समझकर पूजा करते हैं। गोवर्धन पर्वत है, पर गोवर्धन की भी परिक्रमा करते हैं, दूध चढ़ाते, उन्हें भी चेतन समझते हैं। हिमालय पर्वत है परंतु पर्वत को भी हिमालय राज पर्वताधि राजा कह गिरिराज कहकर, हम पर्वतों के राजा गिरीश कहकर हम हिमालय की भी पूजा करते हैं। हमारे यहाँ पर्वत भी चेतन है। हमारी संस्कृति, हम नदियों को भी चेतन के रूप में देखते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी आदि आदि जो पवित्र नदियां हैं, इन नदियों का हम पूजन करते हैं। हम इन्हें जड़ समझ करके नहीं, हमको इनमें भी चेतनता दिखाई पड़ती है। अर्थात हमने प्रकृति को क्या माना, चेतन माना। इसीलिए तो आगे नवरात्रे आ रहे हैं और नवरात्रों में प्राय क्या करते हैं, 9 दिन देवी की उपासना करते हुए आप अपने अपने घरों में यवांकुरित करते हैं, यों को जौ को उगाते हैं और रोज उसको सिंचन करते हैं, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं और उसको किस प्रार्थना करते हैं, नमो देव्ये महादेव्ये शिवाये सततं नमः, नमः प्रकृते भद्राये नियता स्प्रणता सुदा, ऐसा कहकर प्रकृति देवी की आप पूजा करते हैं। प्रकृति को चेतन माना गया है, ये चैतन्य है क्योंकि जो चेतन सत्ता, जो चेतन है वह तो सचराचर में है, वो जड़ में भी है, चेतन में भी है। जो जड़ दिखाई पड़ रहे हैं वो जड़ता भी उससे अलग नहीं है, भिन्न नहीं है, ऐसा मान करके हम सर्वत्र उस चेतन की पूजा करते हैं। और वो चैतन्य रूप में ये सारी प्रकृति है, प्रकृति में नदी है, पर्वत है, वन है, सागर है, सब के सब चेतन है। नारा हिमालय राज चेतन है, उन्होंने भगवती जगत जननी जगदम्बा को प्रसन्न किया और समस्त देवताओं को आश्रय देने वाले हैं। उनके यहाँ गौरी के रूप में भगवती प्रकट हुई, जिनका नाम गौरी रखा गया। छोटी थी, गिरिराज हिमालय के यहाँ देवर्षि नारद का आगमन हुआ। माँ मैना ने मुनिवर के आगमन पर उनका बड़ा स्वागत किया, सम्मान किया, बिठाया और छोटी सी कन्या पार्वती उत्साहवश माँ ने अपनी पुत्री पार्वती को मुनिवर के चरणों में प्रणाम कराते हुए कहा, मुनिवर आपका पदार्पण हुआ है, ये मेरी कन्या है। माँ को बालिका के जन्म होने के साथ ही उसकी वर की चिंता होने लगती है, मेरी पुत्री को कैसा वर मिलेगा। धीरे से पार्वती को कहा कि माँ, तेरी पुत्री को जो वर मिलेगा वो दुनिया में निराला होगा, अनोखा होगा, ऐसा विलक्षण, ऐसा अनोखा, अद्भुत उसका रूप होगा कि ढूंढने पर भी कोई दूसरा प्राप्त निराला होगा। ये तो प्रशंसा की माँ मुनिवर के सम्मान के लिए, उनके लिए पूछने के लिए, उन्हें खिलाने के लिए कुछ व्यवस्था करने गई। अवसर पाकर धीरे से पार्वती जी को कह दिया कि तुम्हारे पति तो भगवान शिव के हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए तुम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करो। पार्वती को नमः शिवाय ये मंत्र देकर देवर्षि नारद यथास्थान को प्रस्थान कर गए और पार्वती की जन्म जन्म की प्रीति शिव चरणों के साथ उदित हो गई। और अब पार्वती अपने मन में दृढ़ निश्चय किए हुए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तप करने का संकल्प करती है। तपस्या करने के लिए माँ से जब कहने लगी, माँ मैं तप करूंगी, प्रथम बार छोटी बालिका के मुंह से जैसे ही सुना कि मैं तप करूंगी तो माँ मैना तप करती है, तभी से माँ का नाम पड़ गया। जैसे हम लोग अचानक कोई बात सुने ऊह निकलती है मुंह से, तो ऊह माँ, अर्थात ऊह के साथ माँ शब्द, क्योंकि माँ हृदय के अंदर से प्रकट होता है। मां शब्द एक ऐसा शब्द है कि जब कोई किसी को कष्ट होता है, तकलीफ होती है, बरबस हमारे मुंह से एक शब्द निकल पड़ता है जिसका नाम है मां। किसी को मैंने ये कहते नहीं सुना, हाय बाप। जब भी मैंने सुना तो यही सुना, हाय मां। अत्यंत पीड़ा होने पर, क्योंकि बालक का हृदय मां के साथ जुड़ा हुआ होता है, और मां कहते हुए पूरा मुंह खुल जाता है, और बाप कहो तो बंद हो जाता है। जवान जहां बंद हो जाए, जवान जहां बंद हो जाए वो होता है पिता। माने पिता के आगे बात करने के लिए तुम्हें कुछ बुद्धि लगानी पड़ेगी, और मां के आगे बात करने के लिए आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता। जो आपके जिह्वा में, जो आपके अंदर होता है, वो आपकी जवान स्वयं वर्णन करने लगती। मां से कुछ ऐसा कुछ संकोच नहीं होता, अर्थात जिसके साथ हम अपने हृदय को बांट सकें, कह सकें, वो मां होती है। तो उ मां निकला, तब से भगवती का एक नाम उमा भी पड़ गया, उप मां। उ और मां शब्द उमा, उमा नाम हुआ। और तब करने के लिए जब मन में निश्चय करने लगी, तब करने के लिए जाऊंगी, हट किया और सखियों के संग उन्हें हिमालय में तप करने के लिए जब वो चली, तो मृतिका की मिट्टी के शिवलिंग को बनाती हैं और उस पर पुष्प चढ़ाती हैं, ओम नमः शिवाय गौरी वंदना च वृंदम। अर्थात गौरी भगवान शिव के समक्ष हाथ जोड़कर वंदन करके केवल क्या बोलती हैं, शिवाय नमः शिवाय। अर्थात शिव के चरणों में जो प्रणाम करती हैं, केवल ये कहकर हाथ जोड़कर वंदन करके भगवान शिव के समक्ष नमः शिवाय 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 इसी केवल एक मंत्र का आप जप करें। मैंने आपको कहा था कि इन पंचाक्षर में शिवाय 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 अर्थात शी शी कहते हुए शिव शिव शिव, अर्थात शिव के इस पावन नाम के स्मरण से नाम का बड़ा भारी प्रभाव है। नारायण नाम से कभी नामी अलग नहीं होता, शब्द से कभी शब्द का अर्थ अलग नहीं होता। शब्द से शब्द का अर्थ जैसे अलग नहीं किया जा सकता, उसी भांति नाम से कभी नामी को अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए नाम स्वयं भगवान है। नाम की ऐसी महिमा है कि जैसे भग शब्द में, भग शब्द के अंदर षड ऐश्वर्य युक्त है, इसीलिए जो षड ऐश्वर्यों से युक्त है उसको हम क्या कहते हैं, ये विश्लेषण है, उसे हम भगवान कह देते हैं। तो उसी तरह याद रखना, नाम भगवान है, नाम भगवान है। इसमें छह विश्लेषण विशेषताएं हैं। नाम में समग्र ऐश्वर्य है, नाम में समग्र ज्ञान है, नाम में समग्र वैराग्य है, नाम में समग्र धर्म है, और नाम में समग्र यश है, और नाम में समग्र श्री है। ये छह चीजें नाम के अंदर रहती है। नाम में समर्थ ऐश्वर्य, ईश्वर का ऐश्वर्य, परमात्मा का शिवाश्वर्य, पवैश्वर्यम, शिव का ऐश्वर्य किसमें है, बोले शिव के नाम में। नाम से ये संपूर्ण ऐश्वर्य भगवान शिव का प्रकट है। नाम में समग्र ज्ञान है, शिव का ज्ञान शिव के नाम में निहित है, नाम में छुपा हुआ है। और शिव का वैराग्य शिव के नाम में, समग्र वैराग्य की समग्रता नाम में है, ज्ञान की समग्रता नाम में है, धर्म की समग्रता नाम में है, ऐश्वर्य की समग्रता नाम में है, श्री की समग्रता नाम में है, यश की समग्रता नाम में है, ये छह चीजें नाम में रहती हैं, इसलिए ये नाम भगवान है, शिव नाम ही भगवान है, ऐसा समझ करके निश्चय करके हमें शिव का स्मरण करना चाहिए, अर्थ सहित अर्थ को ध्यान में रखते हुए। यदि हम नाम का स्मरण करेंगे तो उस नाम स्मरण के द्वारा सबसे बड़ी बात तो यह है कि नाम लेने वाली जिह्वा, इस जिह्वा की पवित्रता, इसीलिए कहा गया है कि जिह्वा पवित्र हो, नहीं तो ये हमारी जिह्वा बड़ी अपवित्र है। अपवित्र है कहने का अर्थ यह है, कभी किसी को कहती है तू बड़ा, कभी किसी को कहती है तू बड़ा, कभी धन को बड़ा, कभी परिवार को बड़ा, कभी पुत्र को बड़ा, कभी पत्नी को बड़ा, कभी किसी को बड़ा बताती है, कभी किसी को बड़ा बताती है। वास्तविकता से सोचो तो हमारी जिह्वा का कार्य तो ऐसा है जैसे व्यभिचारिणी स्त्री होती है, जो स्त्री एक की नहीं होती है, जिसके बहुत पति होते हैं, अर्थात वो किसी को पति, कोई उसका पति नहीं है, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, ऐसी जो स्त्री है उसे दुराचरणी, जिसका आचरण अच्छा नहीं है, वैसी उस दुराचरण स्त्री को जैसे अपवित्र कहा गया है, उसी भांति हमारी जिह्वा भी तब तक अपवित्र है जब तक संसार में और को का बखान करती रहती है, ये भगवान की जिह्वा नाम का बखान नहीं करती, अर्थात भगवान के नाम का स्मरण नहीं करती। इसलिए बहुत से लोग ये प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि हम अपनी जिह्वा से भगवान के नाम के अतिरिक्त व्यर्थ कोई दूसरा नाम अपनी जिह्वा से लेंगे नहीं। संयम है, जैसे प्रथम दिन मैंने आपको कहा था, एक वाणी है, जीव है हमारे पास, और दूसरे ये कान है, इन दोनों के जरिए, इन दोनों के माध्यम से भगवान को हम अपने हृदय में अच्छी तरह से ला सकते हैं, नेत्र हैं इससे भी भगवान को ला सकते हैं, जिह्वा से जब भगवान का शब्दोच्चारण करती हैं तो ये वाणमय रूप है भगवान का शब्द, और इस वाणमय रूप से हम भगवान के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। जिह्वा से भगवान का नाम लेना चाहिए, ये नाम की बड़ी ताकत है नारा। यूं तो कहा है कि यदि विधिना ने किसी के माथे में मेत कुछ कठिन लिख दिया, शब्द महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुंक भाल के,